पृष्ठ संख्या 218। छायावाद उत्तर काल के कथा साहित्य का परिदृश्य जैनेन्द्र कुमार से बनना शुरू होता है, जो प्रेमचंद के मित्र, सहयोगी और शिष्य जैसे हैं, पर अपने लिए चलने का एक भिन्न मार्ग चुनते हैं। प्रेमचंद के बाद उपन्यास की भाषा को नए ढंग से गलाने का काम किया जैनेन्द्र ने। इस दृष्टि से उनकी रचना त्यागपत्र उपन्यास साहित्य की बेजोड़ और स्मरणीय उपलब्धि है। यहाँ जैनेन्द्र शब्दों से उतना काम नहीं लेते जितना उनकी भंगिमा से। जैनेन्द्र के साथ अज्ञेय का नाम आता है, पृष्ठ संख्या 210। इन दोनों ने मिलकर कथा भाषा को वर्णन के प्राथमिक स्तर से ऊपर उठाया। त्याग पत्र के शुरू के अनुच्छेदों में है, हम लोगों का असली घर पछाड़ की ओर था। पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी। जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती तो, पर नहीं, उस तो के मुंह में नहीं बढ़ना होगा, बढ़े कि गए फिर तो सारी कहानी उस मुंह में निगल कर समा जाएगी और उसमें से निकलना भी नसीब न होगा। कथा में कथा के चक्र वाले पंचतंत्र और हितोपदेश के देश में वर्णन करने और कहानी कहने पर ऐसा सहज और अनाटकीय संयम पहली बार देखने में आता है। इन दो तीन वाक्यों में एक और उपन्यासकार का रचना सूत्र छिपा हुआ है, पर वह गौण है। मुख्य है वर्णन न करके वर्णन को व्यंजित कर देने की क्षमता, और तब इस रचना विधान के लिए स्वाभाविक है कि यहाँ छोटे और निरीह से दिखते अव्यय प्रयोगों तो भी और की का महत्व बढ़ जाए। वैसी कोमल भी होती तो में भी और तो महज बलार्थक से अधिक रचनात्मक गुणवत्ता रखते हैं, कुछ वैसे ही जैसे शमशेर की कविताओं के प्रसंग में चर्चा हो चुकी है। और शमशेर तथा जैनेन्द्र दोनों ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र से आते हैं, यह अपने में संयोग से कुछ अधिक है। काम और परिवार के प्रसंग में जैनेन्द्र की कथा नैतिकता भी प्रेमचंद से भिन्न है और अधिक सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक। गांधी दोनों के चिंतन में सक्रिय हैं, पर अलग अलग ढंग से। सुनीता में अपने पुरुष प्रेमी के समक्ष जैनेन्द्र की नारी प्रेमिका का अपने को निरावृत्त कर देना सत्ता के समक्ष सविनय अवज्ञा का विलक्षण प्रयोग है, जिसमें प्रेम और ठंडेपन का एक अजब मिश्रण है। ठीक वैसे ही त्याग पत्र में मृणाल और कोयले वाला का संबंध है, जो अज्ञेय की अपने अपने अजनबी में योके और जगन्नाथ प्रसंग को पूर्वाश्रित करता है। जहाँ योके की तलाश अच्छे आदमी की है, मानवीय संबंधों की बनावट में ये उपन्यासकार प्रेमचंद की अपेक्षा बंगला कथाकार शरद चंद्र के अधिक निकट हैं। यह आकस्मिक नहीं है कि अज्ञेय जिन दो उपन्यासों को अंग्रेजी अनुवाद के लिए चुनते हैं उनमें से एक जैनेन्द्र का त्यागपत्र है और दूसरा शरद चंद्र का श्रीकांत। रक्त संबंधों को ही नहीं, निजी प्रेम संबंधों को भी परिवार की आत्मीयता में ढालकर इन कथाकारों ने आधुनिक समाज में परिवार की परिकल्पना को परिवर्धित किया है। कुछ वैसा ही सगोत्रीय संबंध उनके बीच भी है। अज्ञेय जैनेन्द्र और प्रेमचंद के बीच एक भिन्न प्रकार का रिश्ता है। अपनी पुस्तक स्मृति लेखा के प्रेमचंद संबंधी संस्मरण में अज्ञेय लिखते हैं कि जब वे अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए नजरबंदी में थे, तब जैनेन्द्र ने उनकी दो कहानियां प्रेमचंद के पास जागरण में प्रकाशनार्थ भेजी। लेखक का नाम पूछे जाने पर जैनेन्द्र ने सूचित किया कि लेखक अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण अज्ञेय है, और संपादक ने अज्ञेय नाम देकर ही उनमें से एक कहानी को प्रकाशित कर दिया। यूं अज्ञेय अपने नाम के लिए प्रेमचंद और जैनेन्द्र के ऋणी है। अज्ञेय के काव्य में मानवीय व्यक्तित्व को या कि समूची सृष्टि को ही एक नए अपेक्षाकृत गैर रोमांटिक ढंग से देखने की शुरुआत मिलती है, जिसमें आग्रह परंपरागत राग पर उतना नहीं जितना कि यथार्थ को सही ढंग से समझने पर है। उपन्यासों में मानवीय व्यक्तित्व की परिपूर्णता की ओर क्रमिक यात्रा लेखक की चिंतना का केंद्रीय तत्व है। इस प्रकार कविता तथा उपन्यास मिलकर व्यक्तित्व का और इसलिए अंततः यथार्थ का भी एक समग्रतर चित्र उपस्थित करते हैं। दो भागों में प्रकाशित शेखर एक जीवनी अज्ञेय का पहला उपन्यास है, प्रस्तावित तीसरा भाग छपा नहीं। यहाँ जीवनी का अर्थ एक गद्य रूप की तरह समझा जाता रहा है, पृष्ठ संख्या 211, और कई बार अनर्थक बहस चली है कि शेखर एक उपन्यास है या कि जीवनी। वस्तुतः शीर्षक में जीवनी का भाव जीवन वृत्त से अधिक जीवन जीने की प्रक्रिया से है। लेखक का अगला उपन्यास नदी के द्वीप वयस्क शेखर की प्रणय कथा जैसा लगता है, पर कई स्तरों पर वहाँ शेखर और नदी के द्वीप का रचनात्मक संबंध जुड़ता है, वहाँ कई अन्य स्तरों पर नहीं जुड़ता। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि नदी के द्वीप शेखर की विशिष्ट संवेदना का प्रसार है, शेखर के तीसरे भाग के रूप में उसे नहीं माना जा सकता। शेखर और नदी के द्वीप दोनों में वेदना और प्रेम के माध्यम से उनसे व्युत्पन्न सृजनात्मक ऊर्जा के बीच से, और वेदना तथा प्रेम ये दोनों भी मूलतः एक ही तत्व हैं, व्यक्तित्व की परिपूर्णता स्वायत्त करने की चेष्टा हुई है। शेखर चतुर्मुखी विद्रोह का आख्यान है, पर नदी के द्वीप सबसे पहले एक प्रणय कथा है, अत्यंत सुकुमार, संवेदनशील, विशिष्ट पर उदार। वेदना और प्रेम व्यक्तित्व को कैसे उन्मुक्त और स्वाधीन बनाते हैं या बनाता है, यही उपन्यासकार की जिज्ञासा का मुख्य क्षेत्र है। व्यक्ति और समाज की आंतरिक क्रिया प्रतिक्रिया में व्यक्तित्व कैसे बनता है, इसे एक रूपक के माध्यम से लेखक ने अपनी कविता नदी के द्वीप में अलग से चित्रित किया है। व्यक्तित्व की इस परिपूर्णता के यत्न को खंडित करने वाला सबसे बड़ा तत्व मृत्यु या उसका त्रास माना गया है। आधुनिक काल में पश्चिम के कई दर्शनों ने, विशेषतः अस्तित्ववाद ने, माना है कि मनुष्य समूचे जीवन को अनर्थक बनाती है। मृत्यु सबसे समूचे जीवन को अनर्थक बनाती है। इसके विपरीत अपने तीसरे उपन्यास अपने अपने अजनबी में अज्ञेय की उपपत्ति है कि नश्वरता का भाव ही जीवन को सृजनात्मक, रसमय और अर्थवान बनाता है, और इस तरह मृत्यु व्यक्तित्व की परिपूर्णता में बाधक नहीं वरन उसे निष्पन्न करने में सहायक है। शेखर और नदी के द्वीप में व्यक्ति और समाज के बीच दोनों को जोड़ने वाले व्यक्तित्व का संपृक्त रूप विकसित हुआ है। अपने अपने अजनबी में लेखक उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां व्यक्ति, समाज और व्यक्तित्व के भेद नहीं रह जाते, जहां जीवन अपनी समग्रता में है। यह स्मरणीय है कि जीवन का यह समग्रतर बोध लेखक के उस उपन्यास में अंकित हुआ है जो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो एक मूल वस्तु का क्रमिक विकास अज्ञेय के उपन्यासों में मिलता है। यह भी स्पष्ट है कि दृष्टि का पकना इन उपन्यासों में क्रमशः कथा तत्व को सूक्ष्मतर करके हुआ है। अज्ञेय ने जब शेखर लिखा उस समय हिंदी उपन्यास घटना और कथानक बहुलता से ऊपर उठकर चरित्रांकन को महत्व दे रहा था। चारित्रिक व्यंजना की दृष्टि से प्रेमचंद निश्चय ही हिंदी के शीर्षस्थ उपन्यासकार रहेंगे, पर चरित्र के आचरण और व्यवहार में गहरे स्तर पर संगति की खोज अभी आरंभ न हुई थी। जैनेन्द्र के साथ अज्ञेय इस दिशा के आरंभिक प्रयोगकर्ताओं में हैं जिन्होंने चरित्र को समझने के लिए इसके संवेदन को समझने का उपक्रम शुरू किया। त्यागपत्र और शेखर इस अभियान की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं जो सामाजिक यथार्थ की स्वीकृति और मान्य औपन्यासिक परंपरा से हटकर कुछ कुछ कविता के जैसे सूक्ष्म संगठन की ओर झुकी दिखाई देती हैं। शेखर का पहला भाग लेखक की पहली महत्वपूर्ण कृति के रूप में चर्चित और स्वीकृत हुआ। सच तो यह है कि अज्ञेय के कवि को इस कथा कृति के प्रति दोहरे स्तर पर आभारी होना चाहिए। साहित्यिक प्रतिष्ठा के स्तर पर बाहरी रूप में और रचना के अंतरंग क्षेत्र में व्यापक काव्य भाषा की उपलब्धि के स्तर पर शेखर के माध्यम से लेखक ने न पृष्ठ संख्या 212 केवल हिंदी उपन्यास के अभ्यंतर को रूपांतरित किया, वरन स्वयं अपनी रंगहीन और सपाट आरंभिक कविता भाषा पर गहरा और रचनात्मक संघात पाया। अज्ञेय की काव्य भाषा का पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य शेखर ही है जो स्वयं गद्य भाषा की उपलब्धि है, पर जिसने लेखक की अब तक प्रायः भटकती कविता भाषा को भी एक नई रचनात्मक दिशा की ओर उन्मुख किया। शेखर मूलतः विद्रोह का आख्यान है, पर इतना कहने भर से बात स्पष्ट नहीं होती। असली बात इस विद्रोह की प्रकृति को समझना है। यह विद्रोह उस रोमांटिक प्रवृत्ति से कहाँ अलग है जिसका रूप छायावादी काव्य में दिखाई देता है। रोमांटिक भावधारा से विद्रोह की प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र जुड़ी मिलती है। अज्ञेय की आरंभिक कृतित्व में रोमांटिक वृत्तियों की अभिव्यक्ति दिखती है, पर वह क्रमशः इससे उपराम होता है। शेखर का विद्रोह यह सामान्यतः रोमांटिक प्रकार का है, पर उसमें राग के अतिरेक से अलग होने की महत्वपूर्ण चेष्टा दिखती है। उपन्यास के आरंभ में लेखक मानकर चलता है कि इस जीवन में भी कुछ है, एक उत्ताप, एक ऊर्ध्वगामी दीप्ति, जो यदि विद्रोह की शक्ति नहीं तो विद्रोह शक्ति की उपासना सामर्थ्य अवश्य है। विद्रोह के प्रति यह घना आशंसा भाव शेखर के आगामी क्रांतिकारी जीवन के अनुकूल है, पर शेखर के इस आरंभिक अंश में ही जहां लेखक अपनी मुख्य उपपत्तियां प्रस्तावित कर रहा है, विद्रोह के परंपरागत रागाविष्ट रूप से भिन्न एक नई और अपेक्षा गैर रोमांटिक परिकल्पना की ओर भी वह संकेत करता है। विद्रोह और क्रांति के मनोभावों का विश्लेषण करते हुए उपन्यासकार ने अपनी कामना व्यक्त की है, मैं उस दिन की कल्पना करता हूँ कि जिस दिन हमारे देश के, हमारे संसार के क्रांतिकारी कहलाने वाले व्यक्तियों में ऐसी प्रखर किंतु शीतल बौद्धिक घृणा जागेगी, क्योंकि विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है, यही बौद्धिक घृणा। लेखक के आधुनिक विचार और रचना पद्धति का यह आरंभिक संकेत है। ठंडे विद्रोह का रूप प्रस्तावित करते हुए शेखर शशि से कहता है, मैं जो कुछ लिखता हूँ बहुत उबल कर लिखता हूँ, पर मुझे लगता है कि वह अच्छा नहीं है, बल्कि कभी यह भी लगता है कि उद्देश्य भी उसमें नहीं है, क्योंकि वह उबाल ही उबाल है, और उद्देश्य के लिए तो नक्शा बनाकर संयम से चलना चाहिए। उबाल पर संयम को मूल्य देना यह स्पष्ट ही रोमांटिसिज्म से हटने की कोशिश है, और स्मरणीय है कि संयम को मूल्य देने वाला शेखर क्रांति या विद्रोह को मौलिक प्रतिमान मानकर चलता है। जेल के अपने साथी बाबा मदन सिंह के साक्ष्य पर वह मानता है कि तोड़ना ही धर्म है, बनता तो अपने आप है। शेखर के मन में सर्वतोन्मुखी क्रांति की परिकल्पना है, खास तौर से साहित्य के संदर्भ में। राजनीतिक नेता क्रांति के लिए अलग अलग पक्ष चुनते हैं, यह उनकी सीमा है। एक दिशा में बढ़ने वाली क्रांति से प्रगति संभव नहीं, क्योंकि वह अन्य दिशाओं को आच्छादित कर लेती है। पर साहित्य में क्रांति का एक संगठित पक्ष है तो एक महांतर व्यक्ति पक्ष भी है, और इसलिए शेखर अपने साहित्य में बहुमुखी क्रांति का रूप प्रस्तावित करना चाहता है, जो अन्य क्षेत्रों में संभव नहीं। शेखर एक जीवनी के लेखक के जिज्ञासा और चिंतना का प्रधान क्षेत्र मानवीय व्यक्तित्व है, यह संकेत किया जा चुका है। स्वयं शेखर के शब्दों में इस व्यक्तित्व की संपूर्ति अपूर्ति की कहानी कहना रचना का मुख्य उद्देश्य है, और संपूर्ति अपूर्ति भी समग्रता नहीं है, उन दोनों के बीच की कोई स्थिति है। रचना में इस केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप पृष्ठ संख्या 213 की समस्या कथाकार के सामने है। प्रवेश के लगभग अंत में कथा का उत्तम पुरुष प्रश्न करता है, अपने व्यक्तित्व को मैं समझूं या वह या तू, और अंततः तटस्थता के निर्वाह की दृष्टि से वह यही निर्णय लेता है कि जिसकी कहानी में निहित संदेश को मैं प्रकट करूंगा वह ही है। और यह रचना की प्रस्तावना में ही व्यक्तित्व की खोज के वे महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं, जिनका उल्लेख कथा साहित्य के संदर्भ में अज्ञेय ने अपने बहुचर्चित निबंध समसामयिक हिंदी साहित्य में किया है। आत्मकथात्मक शैली में लिखे जाने के कारण शेखर में यह व्यक्तित्व की खोज अधिक कुशल और प्रामाणिक ढंग से संभव हो सकी है। व्यक्तित्व को समझने का अर्थ है अपने को समझना, अपनी सृजन प्रक्रिया को समझना। इसलिए शेखर की चिंता बराबर यह है कि वह व्यक्ति बने टाइप नहीं, बल्कि शिक्षा देने वाले संसार की कोशिश है कि उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। शेखर का पक्ष है व्यक्तित्व का, रचना का और मौलिकता का, क्योंकि मानवीय सृजनात्मकता की संभावना वही है। व्यक्तित्व को खरा और प्रामाणिक बनाने की प्रक्रिया में वेदना का तत्व लेखक की दृष्टि में पहले आता है। शेखर की भूमिका का प्रथम वाक्य है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। स्वयं लेखक के साक्ष्य के अनुसार शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। तो शेखर जिसकी सृष्टि वेदना में हुई है, वेदना के निर्मायक रूप को बड़े अंतरंग भाव से प्रस्तुत करता है। शशि के ये शब्द शेखर के लिए मानो आलोक स्तंभ है। दुख उसी की आत्मा को शुद्ध करता है जो उसे दूर करने की कोशिश करता है। शुद्धि दूसरे के साथ दुखी होने में नहीं, दूसरे के स्थान पर दुखी होने में है। उपन्यास के दूसरे भाग में शेखर के कारा प्रवास के दिनों का अंकन इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। एक तरह से यह समूची रचना का श्रेष्ठतम अंश है और समकालीन कथा साहित्य में बेजोड़ है। राम जी, बाबा मदन सिंह और मोहसिन अपने अपने ढंग के खरे व्यक्तित्व हैं। शेखर उनसे बहुत कुछ सीखता है, पाता है। उनके व्यक्तित्व में जो दीप्ति है वह वेदना में से उपजी है। शशि का चरित्र भी बहुत कुछ ऐसा है, पर आत्मपीड़न को महत्व देने वाले शरद चंद्र की नारी सृष्टि से वह बहुत अलग नहीं। दूसरी ओर कारा जीवन के शेखर के मित्रों ने, विशेषतः बाबा मदन सिंह ने जीवन का एक क्षण अर्जित किया है। युवा शेखर के सामने भी मूल समस्या यही है। शेखर जीवन के द्वारा जिया नहीं जाता, वह जीवन को जीना चाहता है। उपन्यास के शीर्षक में जीवनी शब्द की सही व्यंजना यही हो सकती है। और जीने की प्रक्रिया के मुख्य उपकरण हैं विद्रोह, सर्वतोन्मुखी क्रांति और वेदना। शेखर के व्यक्तित्व में वेदना और प्रेम का मुख्य सर्जक चरित्र है शशि। सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है। ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना शान की पूर्व कल्पना करता है। शेखर और शशि के इस अत्यंत निकट भाव को लेकर हिंदी साहित्य में बड़ा शोभ रहा है, अब भी है, यह कहना शायद अनुदारता का परिचय देना होगा। शेखर जब प्रकाशित हुआ था उस समय से लेकर स्थिति में काफी अंतर हुआ है। एक मुख्य अंतर तो यही है कि अब तक शेखर को प्रकाशित हुए कई दशक बीत चुके हैं, इतने समय से शेखर हिंदी साहित्य का अंग है। पर यह सही है कि शेखर के छपने पर अनेकानेक पाठकों और आलोचकों ने अपना शोभ इसलिए प्रकट किया था कि शेखर और शशि जैसा घनिष्ठ भाव उनकी दृष्टि में, जिसे तब भारतीय दृष्टि कहना भी पृष्ठ संख्या 214 आसान था, केवल पति पत्नी के लिए उचित है। जबकि शेखर लेखक शेखर और शशि को भाई बहन के रूप में चित्रित करता है, भले ही दूर के रिश्ते से। पुरुष और नारी के बीच गहरी मानवीय संवेदना और समझदारी तथा उसकी अनेक अर्थ छायाओं को समाज केवल एक नाम देना चाहता है, दाम्पत्य का। स्पष्ट ही समाज की दृष्टि में नाम मुख्य है, मानवीय परिस्थितियां गौण। अज्ञेय ने इस अतिचार का विरोध किया। उनकी दृष्टि में शेखर और शशि का संबंध मुख्य है, नामकरण की स्थिति बात की है। स्वीकृत नामकरणों के अनुसार मानवीय संबंध की परिकल्पना यथार्थ को उलट देना है अज्ञेय का मौलिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व जिसके खिलाफ था। यही कारण है कि जिससे शशि शेखर का संबंध रूढ़ मस्तिष्क के लिए व्यभिचार का द्योतक था, जबकि विद्रोही नई पीढ़ी ने उसे सहज और आत्मीय भाव से माना। यशपाल प्रेमचंद उत्तर कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण नाम है। अपने निजी क्रांतिकारी जीवन में यशपाल और अज्ञेय बहुत दिनों तक सहयोगी रहे, पर दोनों के रचना विधान अलग अलग हैं। यशपाल परंपरागत कथा पद्धति अपनाते हैं, जहां घटना चक्र में चरित्रांकन प्रायः उलझ जाता है। अपने आरंभिक कई उपन्यासों में वे क्रांतिकारी जीवन और साम्यवादी आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त करते हैं। उत्तरकालीन लेखन में वे ऐतिहासिक वृत्तों की ओर भी आकर्षित हुए हैं, दिव्या जिसका अच्छा प्रमाण है। यहाँ भी लेखक अपनी बड़ी क्षमता के साथ भौतिकतावादी दर्शन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है। उपन्यासकार की विचार पद्धति का प्रतिनिधि चरित्र मारिश कहता है, मनुष्य की विचार और अनुभव की शक्ति इस स्थूल शरीर के ही सूक्ष्म गुण हैं। वैसे ही जैसे स्थूल पुष्प में सूक्ष्म सुगंध वास करती है, जैसे तेल और बत्ती के जलने की क्रिया का फल प्रकाश है। यशपाल का बहुचर्चित उपन्यास झूठा सच है, दो खंडों में प्रकाशित यह वृद्धाकार उपन्यास देश विभाजन की त्रासद घटना को आधार बनाकर लिखा गया है। यह समूची कथा कृति वर्णन और इतिवृत्त प्रधान है। इतने बड़े उपन्यास में व्यापक कष्ट और पीड़ा को झेलते हुए कहीं कोई चरित्र थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता हुआ आत्मालोचन करता हुआ अंकित नहीं किया गया। इतिहास के वर्णन में तो ऐसा संभव है, जहां किसी चरित्र को सोचता हुआ नहीं दिखाया जा सकता, पर उपन्यास के लिए सहज नहीं। प्रेमचंद के गोदान में चरित्र सोचते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, आत्मालोचन करते हैं, पर झूठा सच के नहीं। पूरा उपन्यास इस दृष्टि से एक विशाल विस्तृत वर्णन है, जिसके निरंतर घटनाक्रम में कहीं कोई अवकाश या अंतराल नहीं। ऐसे कठोर परिवेश में मनुष्य का सक्रिय बने रहना ही उसकी और रचना की भी जिज्ञासा का प्रबल साक्ष्य है। प्रेमचंद के बाद जैसा कहा गया, जैनेन्द्र अज्ञेय कथा क्षेत्र में कई प्रकार के प्रयोग करते हैं। कई अन्य उपन्यासकार प्रेमचंद की सीधी कथा पद्धति में ही आगे बढ़ते हैं। यशपाल, अमृतलाल नागर, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अश्क दूसरे प्रकार के कथाकार हैं। इनमें से कथा कहने की कला सबसे अधिक आकर्षक अमृतलाल नागर की है। जैसा पहले भी संकेत किया गया, कथा कहानी में अपने नाम के अनुसार कहने की शैली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और कहना नागर को अच्छी तरह आता है। घटनाक्रम बुनना कथा विधान के पहला चरण है, जिसके बीच से चरित्र को उभारना अगला। यहाँ तक नागर खूब सफल होते हैं, पर उसके आगे संवेदन का रेखांकन और कथा दृष्टि का संकेत वे नहीं साध पाते। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की कला का प्रतिनिधि और अच्छा उदाहरण है। लखनऊ का मोहल्ला चौक, जो लेखक का अपना निवास स्थल भी है, पूरे उपन्यास में जीवंत तो हो उठा है और एक प्रकार से सामूहिक रूप में कथा का नायक कहा जा सकता है। अलग चरित्रों में पुराने शहर की पृष्ठ संख्या 215, संस्कृति से जुड़ी हुई ताई हिंदी कथा सृष्टि के अविस्मरणीय चरित्रों में है। उपन्यास के शीर्षक में बूंद और समुद्र स्पष्ट ही व्यक्ति और समाज के प्रतीक चित्र में लिए गए हैं, पर कथा विधान की मुखरता में से उनके संबंधों को लेकर कोई दृष्टि प्रवाहित नहीं होती। सामाजिक कथानकों के अतिरिक्त कवियों, कलाकारों और सांस्कृतिक जीवन चिंताओं को सीधे केंद्र में रखकर भी नागर ने उपन्यास लिखे हैं, जिनमें एकदा नैमिषारण्य सबसे अधिक महत्वाकांक्षी विधान को लेकर चलता है। ऐतिहासिक घटनाक्रम के बीच से महाभारत के संपादन की समस्या को उपन्यासकार ने इसमें उठाया है, पर यहाँ भी घटनाक्रम भारी पड़ जाता है, जिसमें कथा दृष्टि उलझ गई है। इलाचंद्र जोशी ने अपने आरंभिक कथा कृतियों में व्यक्ति मन की समस्याओं का चित्रण किया है, इनमें से सन्यासी का विधान अच्छा बन पड़ा है। बाद के उपन्यास अधिकतर सीधी कथाएं हैं, जहाज का पंछी जिसका प्रतिनिधि उदाहरण कहा जा सकता है। उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यास भी इसी प्रकार के हैं, जहां लेखक कहना बहुत कुछ चाहता है पर स्वयं ही कह देता है, उपन्यास को नहीं कहने देता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास एकदम अलग रंग के हैं। सामान्यतः उन्हें ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में माना जा सकता है, पर वे इतिहास के बजाय संस्कृति का आश्रय अधिक लेते हैं। संस्कृत पांडित्य और लोक जीवन में निष्ठा, इन दो प्रायः विरोधी तत्वों से लेखक का अपना व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। इसी के अनुरूप उसके कथा विधान में संस्कृत आख्यायिका और लोक जीवन में प्रचलित किस्सों का संयोग है। संस्कृत से कुछ अधिक ही लेखक की रुचि प्राकृत अपभ्रंश काल में रही है। काल चित्रण की दृष्टि से सबसे बाद में लिखे गए उपन्यास अनामदास का पोथा में सबसे पुराना काल लिया गया है, औपनिषदिक युग, जो क्रमबद्ध इतिहास से पहले का है। पुनर्नवा का काल 4वीं शताब्दी है। बाण भट्ट की आत्मकथा का 6वीं-7वीं शताब्दी और चारू चंद्रलेख का 12वीं-13वीं। काल बोध और वातावरण चित्रण के लिए लेखक की बड़ी सदी भाषा है, संस्कृत की तत्सम शब्दावली और ठेठ बोलचाल के प्रयोगों को सही अनुपात में मिलाते हुए। भाषा, संवेदना और लेखकीय व्यक्तित्व का असाधारण मेल यहाँ देखा जा सकता है। सत्य को पकड़ने और समझने की उत्कट लालसा इन उपन्यासों का प्रेरक तत्व है। सत्य जिसके लिए लेखक के प्रिय कवि और एक तरह से संरक्षक रवि ठाकुर ने कहा कि वह आता है, हमेशा आता है। क्या तुम्हें उसकी पग ध्वनि सुनाई नहीं देती? हजारी प्रसाद द्विवेदी उस शांत पद चाप को सुनने का भ्रम भर प्रयत्न करते रहे। बाण भट्ट, देवरात, रैक को और कुछ अन्य चरित्रों में भी इस बड़े प्रयत्न की छटपटाहट तथा बेचैनी झलकती है। बाण भट्ट से कहा जाता है कि डरना किसी से नहीं है, न गुरु से, न मंत्र से, न लोक से, न वेद से। अज्ञेय के शेखर के सामने भी शुरू से भय की समस्या रही है। उसका मानना है कि जब कोई भयानक वस्तु देखो तब डरो मत, उसका बाह्य चाम काट डालो। रोचक अंतर यह है कि एलियट के सूत्र, कलाकार जितना ही संपूर्ण होगा उतना ही इसके भीतर भोगने वाले प्राणी और रचने वाले मनीषा का पृथकत्व स्पष्ट होगा, को मानने के बावजूद अज्ञेय के व्यक्तिगत जीवन में जितना शेखर का अंश है उतना हजारी प्रसाद द्विवेदी में बाण का नहीं। निडर होने वाली बात तो और भी नहीं, गुरु से न डरने की बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपना नाम प्रकाशित करके गुरु के ज्योतिष संबंधी मत का खंडन भी नहीं कर सके। बनारसी दास चतुर्वेदी के नाम लिखा गया द्विवेदी का पत्र, तिथि 19/9/45। यूँ लेखक के अपने व्यक्तित्व में जहाँ जो भी फाँक रही हो, बाण भट्ट की आत्मकथा का विधान एकदम पृष्ठ संख्या 216 निरंध्र है, पर कथा, चरित्र और दृष्टि का जो सानुपातिक संबंध आत्मकथा में बना वह फिर आगे नहीं सच सका। चारों चंद्रलेख और पुनर्नवा में कथा चक्र प्रधान हो गया, अनामदास का पोथा में दृष्टि को निष्पन्न करने का आग्रह। कहानी का विकास प्रेमचंद उत्तर युग में उपन्यास के समानांतर ही होता है। प्रायः इन सभी उपन्यासकारों ने कहानियां भी लिखी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को छोड़कर, जिनका महाकाव्यात्मक कथा विधान कहानी में अट नहीं सकता था। प्रेमचंद शैली के उस्ताद कहानीकार यशपाल हैं, जिनका कथा शिल्प उपन्यास की अपेक्षा कहानी में अधिक निखरता है। उपन्यासों के दार्शनिक या मतवादी आग्रह यहाँ आड़े नहीं आते। जीवन के अनेक छोटे दिखते पर महत्वपूर्ण पक्षों और मनस्थितियों का अंकन इन कहानियों में हुआ है। दो मुंह की बात जैसे सदे प्रसंग या तांगे वाले और धर्म गुरु के बीच पाप और अहंकार की समस्या से जूझते द्वंद्व का उपाख्यान पाप का कीचड़ कहानी के चिर परिचित बराबर वजन को साधने वाले शिल्प पर आधारित होकर भी मनोविज्ञान के नए नए पक्षों का उद्घाटन करने में बेजोड़ हैं। दूसरी ओर जैनेन्द्र और अज्ञेय हैं, जो यथार्थ के चित्रण में उतनी रुचि नहीं रखते जितना उसकी तह तक जाने में कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान से आगे वे मनोविश्लेषण में बैठते हैं, पर जीवन के संश्लिष्ट चित्रण को बाधित नहीं होने देते। उनकी कहानियां बहुत बार उनके उपन्यासों के ब्यौरे चित्रकला के संदर्भ में डिटेल जैसी लगेंगी। पत्नी या रोज, सुनीता और शेखर के प्रवाह में छोटे भंवर की तरह दृष्टव्य हैं। कथाकार और संपादक प्रेमचंद की अपने से बात के इन रचनाकारों पर टिप्पणियां ध्यान देने योग्य हैं। जैनेन्द्र के लिए तो वे मानते हैं कि उन्हें कुछ कहना ही नहीं है, उनकी चुनी हुई चीजें किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती हैं। हिंदी गल्प कला का विकास। आगे फिर वे अज्ञेय के लिए लिखते हैं, जिनकी पहली कहानी अज्ञेय नाम देकर उन्हें ने छापी थी। इन तीनों सृष्टाओं से कुछ अलग श्री अज्ञेय का रंग है। उनकी रचनाओं में यद्यपि आमंद नहीं आबुर्द है, पर उसके साथ ही गद्य काव्य का रहस्य है। वह भावना प्रधान होती है, गरिमा से भरी हुई, अंतस्तल की अनुभूतियों से रंजित, एक नए वातावरण में ले जाने वाली, जिन्हें पढ़कर कुछ ऐसा आभास होता है कि हम ऊंचे उठ रहे हैं। उपेंद्रनाथ अश्की की कहानियों का विधान उनके उपन्यासों की तुलना में अधिक तोषप्रद है। शैली उनकी भी प्रेमचंद और यशपाल की तरह वर्णन और चित्रण प्रधान है। इस युग के अन्य कहानीकारों में उल्लेखनीय हैं इलाचंद्र जोशी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार तथा होमवती।